පංචදශී ග්‍රන්ථකේ කුටස්ථ දීප ප්‍රකරණය විචාර චල්ලා හැ තම්පත් කා ලක්ෂාර්ථ කුටස්ථ බ්‍රහ්ම හැ වාචාර්ථ චිදාවාස හැ වෘත්ති ප්‍රතිඵලිත චේතන්‍ය චිදාවාස जैसे शरीर से बाहर घटपटादि में है दो चैतन्य है, तो उसमें जैसे विवेक किया गया कुटस्थ ब्रह्म चिदाभास से भिन्न है, ऐसा शरीर के अंदर भी विवेक करना चाहिए। तो इसके ऊपर कहा गया कि शरीर के बाहर तो हो सकता है, चिदाभास से व्याप्य घटाकार पटाकार वृत्ति होती है, लेकिन शरीर में तो ऐसा नहीं है, इसलिए व्याप्य नहीं है तो व्यापक कैसे होगा। मतलब व्याप्य के द्वारा व्यापक का ज्ञान होता है, व्याप्य हो तो धूम हो तो अग्नि का ज्ञान होता है, धूम यदि न हो तो अग्नि का ज्ञान कैसे होगा। इसी प्रकार घटाकार पटाकार वृत्ति को लेकर के उसमें जो व्यापक चिदाभास है उसका ज्ञान होता है। ठीक इसी प्रकार शरीर के अंदर कोई व्याप्य हो तब तो उसमें चिदाभास व्यापक का ज्ञान होगा। तो ऐसा कहने पर, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहा गया नहीं, शरीर के अंदर भी वृत्ति होती है। तो यहाँ पर कैसी वृत्ति? अहंकार वृत्ति, काम रूपी वृत्ति, क्रोध है ना, इच्छा द्वेष, ये सब वृत्ति है। इसलिए यहाँ पर भी 18वां श्लोक में बताया, तो अहंकारा वृत्ति, कामाकारा क्रोधाकारा वृत्ति, उसमें भी चिदावास व्याप्त होकर के रहेगा। और जहां पर चिदावास है वहां पर कुटस्थ भी है, है ना? तो कैसे व्याप्त होकर के रहता है चिदावास? तो दृष्टांत बता दिया कि तपते लोहे बन्हिर यथा, जैसे गरम लोहे में बन्ही एक देश में रहेगी, पूरे देश में रहेगी, पूरे देश में रहेगी, तो व्यापक हो गई अग्नि बन्नी, अब व्याप्य है लोह पिंड। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर व्याप्य हो जाएगी कौन? वृत्ति है ना, अहंकारा घटा एक अहंकारा कामाकारा क्रोधाकारा वृत्तियां, और उसमें व्यापक कौन हो जाएगा? चिदाभास हो जाएगा, है ना? तो ये बात आगे बताते हैं दृष्टांत को लेकर के दिखाते। उन्नीसवा हो गया था क्या? है? हो गया था, हाँ ठीक है। तो उन्नीसवा श्लोक में ये बता दिया था कि जैसे बन्नी से व्याप्त लोहपिंड, लोहपिंड के द्वारा केवल लोहपिंड का ही ज्ञान होगा। तो लोहा पिंड गरम लोहा पिंड हो उसके साथ उसके पास बैठ करके पुस्तक पढ़ सकते हो? अरे भाई लोहा लाल हो गया है ना, तो उसके पास यदि लाइट नहीं हो तो उसके पास बैठ करके कुछ पढ़ सकते हो? अगरबत्ती जल रही है ना, तो उसके पास बैठ करके कुछ पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते हो। लेकिन लोहा पिंड ही दिखेगा, लोहा पिंड में होने वाली बन्नी के द्वारा केवल लोहा पिंड का ज्ञान होगा। अगरबत्ती में जो अग्नि है उसके अंदर अगरबत्ती का ही ज्ञान होगा। ठीक इसी बार यहाँ पर कह रहे हैं चिदाभास से युक्त जो वृत्तियां है, अहंकारा वृत्ति, कामाकारा वृत्ति, क्रोधाकारा वृत्ति, उसके द्वारा किसका ज्ञान होगा? अहंकार का ज्ञान होगा, मैं ये कर, अहंकार का ज्ञान होगा, काम का ज्ञान हो रहा है, समझ में ना, काम का ज्ञान हो रहा है, क्रोध का ज्ञान हो रहा है, तो किसके द्वारा ये ज्ञान हो रहा है? चिदाभास युक्त ओंकारा वृत्ति के द्वारा ओंकार का भान होगा। जैसे आप दृष्टांत में समझना, घट का भान हुआ, घट का प्रकाश हुआ, समझ में ना, तो घट का प्रकाश किससे हुआ? चिदाभास युक्त घटाकार वृत्ति, केवल वृत्ति नहीं, चिदाभास युक्त घटाकार वृत्ति, इसको कहते हैं घट ज्ञान ना। केवल चिदाभास नहीं समझना है, वृत्ति के बिना चिदाभास नहीं होगा। तो जैसे चिदाभास से युक्त घटाकार वृत्ति से ज्ञान किसका हुआ? घट का। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं, है ना, चिदाभास से युक्त अहंकार वृत्ति के द्वारा किसका भान होगा? अहंकार, यानी मैं, ये कह रहे हैं, समझ में। ठीक इस प्रकार काम का ज्ञान होगा, चिदाभास युक्त कामाकारा वृत्ति, ये सब अंतकरण के धर्म होते हैं। अच्छा आगे चलो, 20वां श्लोक में, एवं चिदाभासम वित्पाद्य। तो यहाँ पर किसका ज्ञान कराया? चिदाभास का ज्ञान कराया, है ना, शरीर के अंदर भी चिदाभास होता है। चिदाभासम वित्पाद्य, चिदाभास का व्याख्यान किया कि चिदाभास भी शरीर के अंदर होता है। अच्छा, कहाँ पर चिदाभास रहा? कहाँ पर रहा चिदाभास? वृत्ति में रहा, वृत्ति में रहा, समझ में ना, चिदाभास वृत्ति में रहे। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब कहाँ पर रहा? दर्पण आदि में रहा। इसी प्रकार कूटस्थ ब्रह्म का जो चिदाभास है प्रतिफलन, वो कहाँ पर रहेगा? वृत्ति में रहेगा, वृत्ति में रहेगा। अच्छा, तो उसके बाद ये तो वाचार्थ हो गया, देखो ये वाचार्थ हो गया, है ना, इसलिए अहम मनुष्य, अहम गृहस्थ, अहम साधु, ये जो अहम शब्द हुआ, ये अहम शब्द का वाच्यार्थ फिर कौन हुआ? क्या नहीं समझ में आया? अरे जीव तो शब्द मात्र हो गया ना, तो कौन हुआ? अरे अनुभव लो ना भाई, अहम शब्द है कि नहीं, तो अहम शब्द का वाच्यार्थ कौन हुआ फिर? केवल चिदाभास नहीं समझना भाई, अभी तो ये चल रहा है, चिदाभास युक्त अहंकारा वृत्ति है कि समझ में। केवल अहंकार वृत्ति नहीं समझना है, चिदाभास से युक्त अहंकारा वृत्ति, हाँ ये होता है वाच्यार्थ, इसको हम मैं समझ रहे हैं अविद्या अवस्था में, है कि नहीं समझ में। ये अनुभव करते जाओ ना, अनुभव करते जाओ, ऐसा सूझो कहाँ छोड़ना है फिर, अनुभव करते जाओ तो अच्छा है। इसलिए जिस समय मैं मनुष्य बोलते हो, है ना, उस समय मैं से हम क्या समझ रहे हैं? चिदाभास युक्त अहंकारा वृत्ति, अंतकरण का एक धर्म जो हुआ, जिसको आप मैं रूप से अनुभव करते हो, बोलते हैं, तो चिदाभास युक्त जो अहंकारा वृत्ति, इसको हम क्या समझ रहे हैं? मैं समझ रहे हैं अविद्या अवस्था में, समझ में ना। फिर शरीर के साथ फिर संबंध बना लिया, फिर मनुष्य, मैं मनुष्य हो गया, स्थूल शरीर के साथ हो गया, है कि समझ में। इसलिए ये दोनों के साथ हो रहा है, ध्यान में रखो, कूटस्थ ब्रह्म, हाँ तो है ही वो सामान्य, जिस समय हम मनुष्य बोलते हैं, जिस समय हम क्या करते हैं, अहम मनुष्य बोलते हैं, तो उस समय तादात्म्य हो रहा है, ना, चेतन का तादात्म्य हो रहा है। जैसे सूर्य का तादात्म्य हुआ, सूर्य प्रकाश का तादात्म्य दर्पण के साथ हुआ, हुआ क्या हुआ, इसलिए दर्पण में क्या होगा, प्रतिफलन हो गया, प्रतिफलन हो गया कि नहीं हो गया, इसलिए तो दर्पण में जो प्रतिबिंब है, है ना, वो प्रतिबिंब अंदर है और दर्पण भी है, तो दर्पण और प्रतिबिंब मिला करके हुआ ना, किसका तादात्म्य हुआ भाई? तादात्म्य होकर उसका नाम आपने रख दिया, प्रतिबिंब रख दिया, लेकिन तादात्म्य किसका हो रहा है? सूर्य का हो रहा है, सूर्य प्रकाश का हो रहा है, ऐसा नहीं ना। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी समझना है, तो कूटस्थ ब्रह्म तो सूर्य की तरह, सूर्य तो परिच्छिन्न है, तो यहाँ पर परिच्छिन्न नहीं समझना है, यहाँ पर तो बिल्कुल व्यापक है, दृष्टांत में ऐसा नहीं है, दृष्टांत में थोड़ा अलग हो जाएगा, तो वह तो सूर्य परिच्छिन्न है, यहाँ पर कूटस्थ ब्रह्म जो है ये परिचिन्न नहीं है, ये तो पर्दा हो गया आकाश की तरह व्यापक हो गया, ऐसा समझे ना। तो कूटस्थ ब्रह्म तो है, तो अहंकारा वृत्ति से पहले कूटस्थ ब्रह्म है ना। हाँ, तो अहंकारा वृत्ति एक स्फुरण हुआ, अब अनुभव करते जाओ, अहंकार वृत्ति स्फुरण हुआ अंतःकरण है ना, उससे पहले कूटस्थ ब्रह्म है ही। तो अहंकार वृत्ति स्फुरण होने पर है ना, तो उसमें तादात्म्य हो जाएगा है ना, किसका हो जाएगा, चिदावस तो बाद में होगा ना भाई। ओहकार वृत्ति से पहले कौन था, और कोई तो था नहीं ना, चिदावस था क्या, नहीं था। तो ओहकार वृत्ति से पहले कूटस्थ ब्रह्म था, ओहकार वृत्ति जब स्फुरण हो गई तो स्फुरण किसमें होगी, कूटस्थ में होगी, और कहां पर होगी भाई, उससे पहले कोई था ही नहीं तो कहां पर स्फुरण होगा, कूटस्थ में होगा। वो तो आपको दृष्टांत बता दिया दर्पण की बात, यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा, कूटस्थ ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, था क्या, वो तो पर्दा ही हो गया ना, अधिष्ठान हो गया, ये ओहकार वृत्ति स्फुरण हुआ, तो स्फुरण होते ही झट से उसमें तादात्म्य किसका होगा, कूटस्थ का हो गया। तादात्म्य होने पर जो विशिष्ट हो गया ना, अभी विशिष्ट हो गया, उस विशिष्ट को हम क्या समझ रहे, मैं समझ रहे हो, उसको हम मैं समझ रहे, आ किसको भूल गए, वृत्ति से पहले जो कूटस्थ ब्रह्म था वो अपना स्वरूप, उसको भूल गए हम, अब कल्पित को हमने मैं समझ लिया, आए समझ में ना, ये मैं का अर्थ हुआ, इसको कहते हैं वाच्यार्थ, इसको कब लेंगे वाच्यार्थ बोलेंगे। फिर क्या हो गया, ये शरीर भी भास रहा है, फिर स्थूल शरीर, स्थूल शरीर हो गया ना, तो स्थूल शरीर में फिर हाँ आपने फिर तादात्म्य कर लिया, किसका तादात्म्य होगा, वही कूटस्थ का हो रहा है, वही कूटस्थ अहंकार वृत्ति में भी है और वही कूटस्थ स्थूल शरीर में भी है, आगे नहीं समझ में। हाँ, तादात्म्य तो उसी का ही हो रहा है, और किसका होगा, जो पहले से उसी का ना होगा भाई, और जो नहीं है उसका क्या होगा जो नहीं है उसका क्या होगा, इसलिए मनुष्य शरीर स्थूल होगा कि नहीं है, वो तो सूक्ष्म शरीर मैं, अरे यहाँ पर क्या है स्थूल शरीर, तो स्थूल शरीर में भी आपने तादात्म्य कर लिया, आपने कर लिया मतलब कौन कर लिया, कूटस्थ ही किया, और कौन किया, और कौन करेगा, तो फिर कर लिया तो फिर स्थूल शरीर के साथ, यहाँ पर स्थूल शरीर के साथ हो रहा है मनुष्य कहने से, और इधर मैं कहने से अहंकार वृत्ति के साथ हो रहा है, और दोनों को भूल ही गई, देखो मतलब दोनों का स्वरूप को कूटस्थ को हम भूल ही गए, अहम मनुष्य ये हो गया, समझ में आएगी नहीं, ऐसा होता है। अब जिस समय बोलता है हैं कि अहम ज्ञानी, ये बोलता है, थोड़ा पढ़ लिया ना, थोड़ा पढ़ लिया वेदांत सुन लिया, तो क्या बोलता है, अहम ज्ञानी, तो किसके साथ तादात्म्य हो रहा है, यहाँ पर किसके साथ तादात्म्य हो रहा है, वृत्ति तो है ही अहम कहने से, तो वो है ही, उधर ज्ञानी जो बोल रहा है ये किसके साथ हो रहा है, नहीं कूटस्थ का किसके साथ हो रहा है, अरे भाई अहम कहने से अहंकार वृत्ति के साथ, ज्ञानी बोलने से किसके साथ हो रहा है, अरे भाई ज्ञान पना किसका धर्म है, बुद्धि का धर्म भाई, किसका धर्म है, हाँ ये जो विद्वत्ता है ना, ज्यादा पल्ल्या तो बुद्धि बढ़ गई, ज्यादा पल्ल्या तो क्या बढ़ गई, बुद्धि बढ़ गई, तो बुद्धि में विद्वत्ता है, ज्ञान पना ज्ञानीपना, तो ज्ञानीपना जो बुद्धि का धर्म है, तो बुद्धि के साथ तादात्म्य कर लिया तो बुद्धि का धर्म जो है, बुद्धि का धर्म क्या हुआ, विद्वत्ता ज्ञानीपना, वो जो ज्ञानीपना जो है ना बुद्धि की प्रतिभा है, उसके साथ फिर अपने में आरोप कर लिया, तो ज्ञानी हो गया, और क्या, अहम ज्ञानी बोलता है ना, तो मनन कर लिया तो अहम ममता बोलता है, कि नहीं समझ में, स्मरण कर लिया तो मैं स्मरण करने वाला हूँ बोल दिया, और अज्ञान के साथ कर लिया तो अहम अज्ञानी बोल दिया, है समझ में, ये सब होता है तादात्म्य है ना, तो ये समझ कर रखो, ये होता है विशिष्ट, ये होता है विशिष्ट, तो ये वृत्ति होने से पहले जो है वो होता है कूटस्थ। ये रख लो, बीसवा श्लोक में बता रहे हैं, एवं चिदाभासम व्युत्पाद्य, चिदाभास को बता दिया, फिर कूटस्थ स्वरूपम व्युत्पादयितम, कूटस्थ का जो स्वरूप है वासली उसका बोध कराने के लिए है, तद उपयोगिनम, वो ज्ञान के लिए जो उपयोगी है, कूटस्थ स्वरूप को समझने के लिए जो उपयोगी है साधन, उस उपयोगी को बता रहे। क्या उपयोगी है? वृत्ति अभाव अवसरम, वृत्ति का अभाव हो जाता है ना, तो वृत्ति का अभाव को लेकर के समझना है कूटस्थ ब्रह्म को, मैं ना, जैसे धूम को लेकर के किसको समझते हो आप? अग्नि को, है ना, इसलिए धूम हो गया लिंग, धूम हो गया लिंग, तो लिंग मतलब ज्ञापक, क्यों लिंग हुआ? बन्ही ज्ञान का जनक, ऐसा समझ में, कि बन्ही का जनक धूम है, धूम किसका जनक है? हाँ, वो बन्ही से उत्पन्न होता है धूम, इसलिए बन्ही का जनक धूम नहीं बनेगा, लेकिन बन्ही ज्ञान का जनक बन सकता है, धूम का ज्ञान हो तो बन्ही का ज्ञान हो गया, इसलिए धूम को कहते हैं लिंग, हो गया ना भाई? ठीक, इसी में कूटस्थ ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान करना है ना, तो उसका ज्ञान का जनक कौन होगा? वृत्ति का अभाव, हाँ, वृत्ति का अभाव, वृत्ति का अभाव होने पर उसको विचार करने पर कूटस्थ ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बता रहे हैं, जैसे कि देखो, पहले बताया ना अर्थापत्ति बोलते ना, कि देवदत्त बहुत मोटा है तो दिन में नहीं खाता है, तो किसके किसका ज्ञान होता है उससे? रात्रि भोजन हो गए ना, कि स्थूलत्व अनुपत्या, रात्रि भोजन की कल्पना आप करते हो, दिन में नहीं खाता है फिर भी मोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? रात में खाता होगा, हो गया, ये रात्रि भोजन ज्ञान का जनक कौन हो गया? स्थूलत्व का ज्ञान, स्थूल मोटा, तो स्थूलत्व का ज्ञान जैसे रात्रि भोजन ज्ञान का जनक हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, इसी बार यहाँ पर कह रहे हैं, तो वृत्ति का अभाव का निरूपण करेंगे तो कूटस्थ ब्रह्म का ज्ञान होगा। कैसे होगा बता रहे हैं, दर्शयती व्र दिखाते हैं बीसवां श्लोक में, क्रमाद विच्छिद्य विच्छिद्य, क्रमाद विच्छिद्य विच्छिद्य, जायन्ते वृत्तयो अखिलाः, जायन्ते वृत्तयो अखिलाः, सर्वा अपि विलीयन्ते, सर्वा अपि विलीयन्ते, सुप्ति मूर्छा समाधिशो, सुप्ति मूर्छा समाधिशो। देखो बोलते हैं भाई, ये जो वृत्तियां है ना, वृत्तयो अखिलाः, वृत्तयो अखिलाः, ये जो वृत्तियां हो रही, अनंत वृत्तियां हो रही है, एक दिन में कितनी वृत्तियां हैं को गिन ही नहीं सकते, अनंत वृत्तियां हैं ये, समाज जो वृत्तियां हैं उत्पन्न होती है, तो एक साथ होगी कि क्रम से होगी भाई? क्रम से होगी ना, है ना, तो क्रम से वृत्तियां होती, एक साथ नहीं होती है, इसलिए मन है। देखो ये मन का ज्ञान, देखो है ना, इसलिए मन को मानना पड़ेगा ना, युगपत ज्ञान की उत्पत्ति न होना, युगपत एक साथ है ना, वृत्त्यात्मक ज्ञान की उत्पत्ति न होना, यही मन में हेतु है। पकड़ में है कि नहीं? चक्षु का संबंध तो हो रहा है, चक्षु तो वही इंद्रियां है, फिर भी एक साथ घट ज्ञान पट ज्ञान हो रहा है क्या? नहीं, इसका मतलब कोई पदार्थ है जो इंद्रियों से अलग है, चक्षुरादि इंद्रियों से अलग है, वो कौन होगा? मन होगा, समझ में ना? ये है ये महर्षि गौतम जी बोलते हैं, तो क्रम से होता है, वृत्तियां होती है, तो क्रमात् कह दिया। और टूटते टूटते होती है, विच्छिद्या विच्छिद्य, टूट टूट के रहोगी। घटाकार वृत्ति हुई है ना, घटाकार वृत्ति हुई, मान लीजिए भाई आप रसगुल्ला खा रहे हो है ना, तो खाने के बाद जो है आप पापड़ लाओ, तब तो पूरा होगा भंडारा, अंत में क्या खाते हैं, पापड़ खाते हैं। तो रसगुल्लाकार वृत्ति खत्म होगी तो कौन होगा, फिर पापड़ाकार वृत्ति हो गई है कि नहीं, ये हो जाता है। तो क्रम से होती है और विच्छिद्या विच्छिद्या है ना, तो टूटते टूटते होती है। ये कहां पर, जागृत में भी है और सपना में भी है। जागृत में सपना में ये वृत्तियां होती है और नष्ट भी होती है। अच्छा, तो ये तो कह दिया, तो वृत्ति का अभाव हुआ ना, फिर वृत्ति का अभाव हुआ। और संपूर्ण वृत्तियों का अभाव कहां पर हो जाएगा, सुप्ति में, मूर्छा में, समाधि में। देखो लिखते हैं, सुप्ति मूर्छा समाधि सु सर्वा अपि विलीयन्ते। सर्वा स्त्रीलिंग है, वृत्ति स्त्रीलिंग है ना, इसलिए सर्वा सर्वा का वृत्तय वृत्तियां, समस्त वृत्तियों का लीन हो जाता है सुप्ति सुसुप्ति अवस्था में, मूर्छा में और समाधि में। तो यहां पर ध्यान रखना है ना, तो यद्यपि तीनों में वृत्तियों का अभाव है ना, सुसुप्ति में भी है, मूर्छा में भी है और समाधि, समाधि कौन सी, निर्विकल समाधि, सविकल समाधि नहीं है ना, में ना। तो लेकिन तीनों में थोड़ा अंतर है, है समानता तो वृत्ति का अभाव है, लेकिन अंतर इतना समझ लो। तो सुसुप्ति अवस्था जो है प्रारब्ध कर्म का क्षीण होने पर, स्वप्न काल में जागृत काल में जो प्रारब्ध कर्म था ना भोग देने वाला, प्रारब्ध कर्म मतलब जो फल दे रहा है ना, वो होगा प्रारब्ध कर्म, समझ में ना। तो प्रारब्ध कर्म जब क्षीण हो गया भैया है ना, तो क्षीण हो गया तो कहाँ जाएंगे हम, सुसुप्ति जाएंगे है ना। तो कर्म का क्षीण होने पर प्रारब्ध अवस्था हुई, समझ में ना। अच्छा, अथवा मन को, मन के थकान को मिटाना हो तो सुसुप्ति में जाएंगे, ये सुसुप्ति अवस्था हुई है ना। तो वहां पर ये बुद्धि वृत्ति नहीं है, हो गया ना। अच्छा, और मूर्छा में क्या, रोग विशेष हो, किसी कारण हो, तो वहां पर क्या है, मूर्छा हो जाएगी, बहुत पीड़ा हो, बहुत ये हो, तो रोग विशेष हो तो वहां पर मूर्छा हो जाएगी है ना, आप तो जानते हैं डॉक्टर लोग। तो ये मूर्छा अवस्था हो गई, तो मूर्छा अवस्था में वृत्तियां नहीं है, समझ में ना। लेकिन समाधि में ऐसा नहीं है, ना रोग विशेष है, ना कोई कर्म है ना, लेकिन वहां पर योग का अभ्यास करते करते समाधि अवस्था होगी, है कि नहीं भाई। याम अष्टांग योग आया कि नहीं, याम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो वहां पर समाधि संप्रज्ञा समाधि, संप्रज्ञा समाधि को भी योग कह दिया। उसके बाद वास्तविक समाधि क्या है, योग चित्तवृत्ति निरोध, ये समाधि बताया। समाज वृत्तियों का निरोध हो जाएगा तब उसको निर्विकल समाधि कहेंगे, वो है योग। लेकिन उसका साधन संप्रज्ञा समाधि है, इसलिए उसको भी बोल दिया योग। लेकिन वास्तविक योग क्या है, योग चित्तवृत्ति निरोध। तो क्रम से यम नियम नियम आदि का क्रम से अभ्यास करेंगे तो समाधि अवस्था की प्राप्ति होगी, ये अंतर हो गया है ना, ये अंतर हो गया। अच्छा, ये भी समझ रहे हो कि वहां पर समाधि सुसुप्ति अवस्था में वृत्तियां भी नहीं है और बुद्धि भी नहीं है, बुद्धि का लय हो गया, वृत्तियां भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है वहां पर, है समझ में कि नहीं, ऐसा है। और जो है कहां पर, समाधि अवस्था में बुद्धि वृत्तियां तो नहीं है लेकिन बुद्धि है, वहां पर बुद्धि है कि नहीं। हाँ ऐसे समझ लो। और समाधि में क्या है, बुद्धि की वृत्तियां तो नहीं है, स्वरूप में स्थित तो हो गया लेकिन मुक्त नहीं होता है सुषुप्ति में, समझ में ना। क्यों? अज्ञान वहां पर है। स्वरूप में स्थित, देखो स्वरूप में स्थित तो हो गया, तदा द्रष्टु हो स्वरूपे अवस्थानम, योग सूत्रकार बोलते ना, तदा द्रष्टु हो स्वरूपे अवस्थानम, तदा कदा जहां पर वृत्ति का अभाव हो जाता है जिस अवस्था में, वहां पर जीव जो है ना अपने स्वरूप में स्थित होता है, स्वरूप में स्थित तो होता है लेकिन स्वरूप में स्थित तो हुआ लेकिन अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई। तो अज्ञान की निवृत्ति क्यों नहीं हुई, क्योंकि स्वरूप का ज्ञान नहीं है, स्वरूप में तो है प्रतिष्ठित लेकिन स्वरूप का ज्ञान नहीं है, स्वरूप का ज्ञान नहीं है। तो जैसे घट का अज्ञान की निवृत्ति हुई, घट का भान होने से पहले घट का अज्ञान था कि नहीं था, तो अज्ञात घट बोलेंगे उसको। तो अज्ञात घट को घट का प्रकाशक कौन हुआ, कहा चिदाबाज बोल रहे, चिदाबाज कहाँ अभी, कूटस्थ। अरे भाई अज्ञात घट है ना, तो अज्ञान का विषय कौन हुआ, घट हुआ, तो कूटस्थ ने प्रकाशित किया है ना। हाँ आप जो अज्ञान का निवर्तक अभी कौन हुआ, कौन सा ज्ञान हुआ, अरे घट ज्ञान तो ठीक है लेकिन घट ज्ञान बोले से किसको लेंगे, चिदाभास युक्त घटाकार वृत्ति, ये होता है घट ज्ञान। इसलिए वृत्ति यदि ना हो तो अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, है कि नहीं। दृष्टांत है, घट का अज्ञान तब नष्ट होगा है ना जब घटाकार वृत्ति हो और घटाकार वृत्ति में प्रतिबिंबित हो, है कि नहीं। में इसका तात्पर्य ये निकला कि वृत्ति के बिना अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार वहां पर सुषुप्ति अवस्था में वृत्ति है नहीं है, किसी प्रकार की वृत्ति नहीं है, तो ब्रह्माकार वृत्ति नहीं है। ब्रह्म में प्रतिष्ठित तो हुआ लेकिन ब्रह्माकार वृत्ति नहीं है, तो ब्रह्माकार वृत्ति न होने से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, है कि नहीं समझ में। इसलिए जागृत में जब ब्रह्माकार वृत्ति होगी है ना, शुद्ध अंतकरण में श्रवण मनन निध्यासन के द्वारा ब्रह्माकार वृत्ति को जो प्राप्त करेगा तब तो जाएगा अज्ञान की निवृत्ति होगी अंतरी। समाधि में इसलिए निवृत्ति हो जाएगी, समाधि में निवृत्ति इसलिए हो जाएगी, समाधि करते करते जब ब्रह्माकार वृत्ति की प्राप्ति हो जाएगी तो अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी, है ना। ये अंतर समझ लो। तो क्या हो गया, सुप्ति मूर्छा समाधिशु सर्वापि विलीयन्ते। सुसुप्ति में भी नहीं है देखो वृत्तियां, मूर्छा में भी नहीं है और समाधि में भी नहीं है, समझ में ना। हाँ अच्छा आगे देखो, 21वां श्लोक में भवतु एवं समाध्यादो वृत्ति विलय। ठीक है समाधि आदि में वृत्ति का लय हो जावे, होने दो शंका, होने दो समाधि आदि करने से सुसुप्ति मुमुक्षा वृत्ति का लय हो गया भाई। तो कहते इतने मात्र से कुटस्थ ब्रह्म है कैसे जानेंगे, अनेना कथम कुटस्थ अवगम्यते। वृत्ति का लय होने मात्र से कुटस्थ का भान कैसे होगा, कुटस्थ है कैसे मानेंगे, यही आशंका हो गई। कहते हैं वृत्ति अभाव साक्षित तेना असौ अवगम्यते इति आह। ये देखो भैया वृत्ति का अभाव जो हो रहा है ना, इसका भान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ तो कैसे हो रहा है, उड़ने के बाद हो रहा है, स्मरण हो रहा है, हाँ स्मरण हो रहा है ना, तो स्मरण की अन्यथा अनुपपत्ति से, देखो पीनत्व की अन्यथा अनुपपत्ति से है, जैसे रात्रि भोजन की कल्पना करते हो रात्रि भोजन, अरे मोटा है इसका मतलब रात में जरूर खाता होगा, है कि नहीं। ठीक इसी प्रकार से उड़ने के बाद स्मरण हो रहा है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं जाना, मैंने कुछ, ये स्मरण हो रहा है, मतलब किसी प्रकार के वृत्तियां नहीं थी, ऐसे स्मरण हो रहा है ना उड़ने के बाद। ये स्मरण की अन्यथा अनुपत्ति, मतलब स्मरण न होता, रात्रि भोजन यदि न करता तो मोटापा न होती, मोटा न होता देवदत्त। ठीक इसी प्रकार वहां पर साक्षी चैतन्य यदि न होता, कहां पर भाई, केवल सुषुप्ति ने, तीनों को ले लो, सुषुप्ति समाधि मूर्छा, वहां पर यदि कोई चेतन न होता तो अभिस्मरण न होता, है समझ में ना। हाँ, ये है, इसको कहते हैं अर्थापत्ति, इसको कहते हैं अर्थापत्ति। इसलिए वहां पर चिदावास तो है ही नहीं, तुम कुटस्थ को जो नहीं मानोगे तो चिदावास को तो मानोगे, लेकिन चिदावास तो वहां पर है ही नहीं। क्यों नहीं है चिदावास, वृत्ति नहीं है। अब वृत्ति यदि मानोगे तो फिर सुषुप्ति है ही नहीं, फिर वो उसकी सुषुप्ति कैसे कहोगे। वृत्ति नहीं है तो चिदावास भी नहीं है, इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि साक्षी चैतन्य कुटस्थ तो वहां पर है, ये अर्थापत्ति, समझ में है ना। इसी अभिप्राय से कहते हैं वृत्ति अभाव साक्षित्वेन असौ अवगम्यते, इसलिए कुटस्थ चेतन तो है ही, है ना। इति आह, इस अभिप्राय से कहते हैं संधयोखिल वृत्तिना, संधयोखिल वृत्तिना मभावाश्चावभासिताः, मभावाश्चावभासिताः निर्विकारेण येनाश, निर्विकारेण येनाश कूटस्थ इति चोच्यते, कूटस्थ इति चोच्यते बोलते हैं अखिल वृत्ति नाम अभाव। और उससे पहले बोले संधय, हरि हरि ही हरि हरय बोलते हैं नहीं, प्रथम व्यक्ति में हरि ही हरि हरय, प्रथम बहुवचन में क्या बना हरय, हरि शब्द का। ठीक से बगैर संधि का क्या बनेगा, संधि ही संधि संधय हरि की तरह बहुवचन हो गया प्रथम का, है ना। तो ये जो संधियां है किसकी संधियां, वृत्तियों की संधि। एक वृत्ति उत्पन्न हुई है ना तो नष्ट हुई, और दूसरी वृत्ति उत्पन्न होने से पहले संधि तो रहेगी ना, गैप संधि तो रहेगी, वो संधि कह रहे। अथवा ऐसी संधि ले लो, जागृत अवस्था नष्ट हुई और सुषुप्ति अवस्था उत्पन्न होने से पहले, समझ में ना, तो अवस्था रहेगी, उसको भी संधि कहेंगे, उसको भी संधि कहेंगे। ये ले लीजिए, तो वृत्तियों दो वृत्ति के बीच में जो संधि है, अथवा जागरण सपनों के बीच में जो संधि है, तो उसमें चेतन रहेगा कि नहीं रहेगा, वो तो रहेगा जरूर, है ना। इसलिए तो कुटस्थ हुआ, वृत्ति उत्पन्न हो अथवा वृत्ति हाँ उत्पन्न न हो, वो कुटस्थ चेतन तो रहेगा, है ना। ये कह दिए संधि, और बोल दिया अखिल वृत्ति नाम अभाव, समस्त वृत्तियों का अभाव। कहाँ पर अभाव हुआ, सुषुप्ति मूर्छा समाधि, लेकिन उसका भान हुआ कि नहीं भाई, हुआ। भान यदि न होता तो स्मरण न होता, जिसका भान नहीं होता है उसका स्मरण होता है क्या, नहीं होता है। जिसका स्मरण हो रहा है तो इसका मतलब पहले अनुभव हुआ था। अब किसका स्मरण हो रहा है उड़ने के बाद, किसका स्मरण हो रहा है भाई, नहीं स्मरण किसका हो रहा है, वृत्ति के अभाव का स्मरण हो रहा है किसका, है ना। ठीक से बैठा कर रखो, स्मरण किसका हो रहा है, हाँ स्मरण आत्मा का नहीं होता, ध्यान में रखो। आत्मा का स्मरण कभी नहीं होता, कूटस्थ का स्मरण कभी नहीं होता है, इसलिए स्मरण किसका हो रहा है अभी, वृत्ति के अभाव का स्मरण हो रहा है। कल आपने लड्डू को देखा था है ना, अभी लड्डू का क्या हो रहा है, स्मरण हो रहा है। है समझ में ना, ठीक इसी प्रकार अभी किसका स्मरण हो रहा है, वृत्ति के अभाव का स्मरण है। अभाव का स्मरण तब होगा जब पहले अनुभव हुआ हो, तो फिर अनुभव किससे होगा, कूटस्थ से होगा, ये कह रहे हैं। असंधय अखिल वृत्ति नाम अभावश्च अवभाषिता, प्रकाशित हुए थे, प्रकाशित हुए थे तो किससे हुए थे भाई, वही तो कूटस्थ है, ये कह रहे निर्विकारेण ये न, वो निर्विकार चेतन के द्वारा हुए थे सब, है ना, वो कूटस्थ जो है ना निर्विकार है, निर्विकार है वो। है ना, क्योंकि वृत्ति क्यों निर्विकार हो गया, कहते ये वृत्ति है ना, वृत्ति और वृत्ति का नष्ट होना ये किसका धर्म है, मन का धर्म है ना, अरे क्या मन का धर्म और किसका धर्म है, वृत्ति उत्पन्न होना, वृत्ति का नष्ट होना, ये किसका धर्म होगा भाई, मन का धर्म है, हो गया कि नहीं, कूटस्थ का धर्म होगा, कूटस्थ का धर्म नहीं होगा, समझ में है ना। अच्छा पर्दा, अब चलचित्र का पर्दा हो रहा है, पर्दा है तो क्या हुआ कि ये घर बन गया, क्या बन गया, घर बन गया, और घर बन गया तो अच्छा नहीं बना है ना, तो मालिक ने कहा इसको तोड़ दो, है ना, तो तोड़ दिया भाई, तो पर्दे का कुछ हुआ, इतना हथौड़ा मारा, पर्दे का कुछ हुआ क्या, कुछ हुआ नहीं, इसी अगर पर्दा की तरह कौन हो गया, कूटस्थ हो गया, और चित्र की तरह कौन हो गया, हाँ घर हो गया, वृत्ति, वृत्ति हो गया है, इसीलिए ये कल्पित पदार्थ ये सब चित्र है, जितने भी अंतकरण की वृत्तियां सब क्या है, कल्पित है, इसलिए कल्पित पदार्थ का संबंध अधिष्ठान पदार्थ के साथ नहीं होता है, इसलिए भगवान ने क्या बोला, नतमस्तानि भूतानि, मेरे में कोई वास्तविक है ही नहीं, देखो नतमस्तानि भूतानि, कोई भी संसार का पदार्थ मेरे में है ही नहीं, मतलब भास रहा है, जो भास रहा है उसका क्या संबंध बनेगा, इसलिए ये कूटस्थ ब्रह्म पर्दा की तरह कूटस्थ है ना, एक इसलिए निर्विकार बोल दिया, निर्विकारण ये ना, उस निर्विकार कूटा चेतन के द्वारा प्रकाशित होते हैं, यही हो गया कूटस्थ भाई, असो कूटस्थ इति च उच्यते, वो हो गया कूटस्थ। थोड़ी सी टीका देखो, एक पंक्ति, वृत्ति संधय, संधि से क्या लेंगे, वृत्तियों की संधि, वृत्तियों की संधि, और अभाव, वृत्ति अभावश्च, वृत्ति का अभाव हो जाता है, ये दोनों जो है, दोनों कौन कौन हो गए, नहीं नहीं, वृत्ति की संधि और वृत्ति का अभाव, ऐसा है, वृत्ति की संधि और वृत्ति का अभाव, ये दो, ये न चैतन्य न अभाष्यन्ते, जिस चेतन के द्वारा प्रकाशित होते हैं, स कूटस्थ, वही है कूटस्थ, ऐसा अवगंतव्य, मतलब निश्चय करना चाहिए, अवगंतव्य मतलब केवल मानना नहीं चाहिए, मतलब आया कि नहीं समझ में, हाँ मानना अलग बात होती है और उसको निश्चय करना अलग, मानने मात्र से वो कट जाएगा ना, लेकिन निश्चय हो गया, अनुभूति हो गई तो हो गए, जैसे किसी को बोल जाता हूँ आज क्या बनना है, नाटक में राजा बनना है, हाँ वो तो भूल भी जाएगा नाटक करते करते भी, है ना, लेकिन जो मैं देवदत्त हूँ ये माना हुआ नहीं है। वो तो निश्चय किया हुआ है, ठीक इसी प्रकार जो निश्चय हो गया कि मैं तो कूटस्थ हूँ, फिर वो उसको कितना भी लोग बोले, तुम गृहस्थ हो, साधु हो, महंत हो, मल्लेश्वर हो, कुछ भी बोले, कुछ भी आरती उतारे, कुछ भी गाली देगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो कूटस्थ हूँ, इसलिए मानना अलग बात है, निश्चय करना अलग बात है, इसलिए टीकाकार ने बोले अवगंत, निश्चय करना चाहिए, आगे का फल आगे बताएंगे विचार, बेश इतने में रखते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् पूर्णश्च पूर्णमेव ओम शांति।